நமோ சித்தாளம் நமோ ஆயிரியாளம் நமோ வஜ்ஜாயாளம் நமோ லோயே சவ்வசாஹூளம் மங்களம் பகவான வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜெயின தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயினம் ஜயது சாசனம் த்வை சதி பரமாத்மன் மாத்ரஷான் மோஹ முக்தான் கதம தனு வசத்வான் புத்த கேஷான் யஜேஹம் சுகத மகதரம் வா வாகதீஷம் சிவம் வா ஜித பவம் அபிவந்தே பாசுரம் ஸ்ரீஜினம் வா ணமியூணிணம் வீரம் அனந்தவர்ணானதன்சனசாவம் ஓச்சாமி நியமசாரம் கேவலிசுத கேவலீபணிதம்
நியம்சார் பரமாகம் சாஸ்திர யஹாம் விராஜமான் ஹை. उसमें परम समाधि अधिकार के अंतिम श्लोकों पर अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल व्याख्यान सुना है. थोड़ी चर्चा अपन उस पर करेंगे. उसके पहले जो व्याख्यान के बाद में 11 मिनट का एक पीस अपन सबको सुनाया गया, वो समय प्रवचन शास्त्र के प्रवचन सुधा का उसका एक अंश था और उसमें प्रसंगानुसार पूज्य गुरुदेव श्री उनको बारंबार इसका विकल्प रहता है कि ये जो जिन प्रतिमा के अस्तित्व का ही निषेध किया जाता है वो बराबर नहीं है. बहुत मार्मिक प्रसंग आ गया. गुरुदेव श्री जो श्वेतांबर ग्रंथों का भी बहुत अभ्यास करते थे, वाचन करते थे, उन्होंने बताया जीवाभिगम नाम का जो सूत्र है उसमें एक प्रकरण आया तो उसमें प्रतिमा की बात आई तो गुरुदेव के प्रारंभ की बात है, जब दीक्षा लेने के तत्काल बाद की बात है तो उसमें कहा इसमें तो प्रतिमा की चर्चा है. और जब ये अंश शुरू किया था तो द्रौपदी की चर्चा आई थी कि द्रौपदी जिन भवन में गई ऐसा, तो अगर जिनेन्द्र नहीं है तो जिन भवन कैसा, तो जिन प्रतिमा होगी तभी तो उसको जिन भवन कहेंगे. तो उसमें से भी उन्होंने प्रतिमा का अस्तित्व सिद्ध किया. फिर जीवाभिगम वाली घटना सुनाई और उनके जो समझ लीजिए गुरु भाई थे मूलचंद जी, कितने सरल हृदय गुरुदेव, कोई और दो तीसरा नहीं था, हम दो ही थे. मैंने उनसे अकेले में पूछा कि ये तो जीतंकर की प्रतिमा तो इसमें लिखी है, क्या है वो एक शब्द आया था जिनो प्रमाणे जिनेशो प्रमाणे, जैसे जिनेन्द्र भगवान है उस प्रमाण की प्रतिमा ऐसा, तो इससे तो साफ सिद्ध होता है. और आप लोग कहते हो नहीं नहीं वो तो यक्ष की प्रतिमा है, यक्ष की प्रतिमा है. एक बहुत गुरुदेव को उस घटना से बड़ी चोट लगी और उन्होंने साफ कहा कि तब से मेरी श्रद्धा उड़ गई है? टर्निंग प्वाइंट होता है ना हर एक के जीवन में, तो उन्होंने कहा कि तब से मेरी श्रद्धा उड़ गई. अरे ये तो सब पोलम पोल है, बाहर में कुछ कहते हैं अंदर में कुछ मानते हैं. वो मूलचंद जी ने ये खानगी में स्वीकार किया कि हां बात तो बराबर है, ये प्रतिमा तो तीर्थंकर की ही है, उसी की चर्चा है, तो फिर कहते क्यों नहीं हो। उस समय गुरुदेव ने अपनी सत्य निष्ठा का परिचय दिया कि हम कोई इस संप्रदाय में जन्मे हैं कि मुंह पट्टी वाले संप्रदाय में जन्म ले लिया, इसलिए जो इसमें कहा जाएगा वो ही हम मान लेंगे, इस धोखे में नहीं रहना, हमको नहीं जचेगा था एक क्षण में सब छोड़ देंगे, ऐसा वार्निंग उन्होंने उसी समय दे दी कि जो बात हमें स्वीकार नहीं होगी वो हम एक क्षण में छोड़ देंगे। देखो गुरुदेव के जीवन की ऐसी बहुत सी बातें हैं कि वो हम अपने आचरण में श्रद्धान में लाएं, ये बड़े पुरुषार्थ की बात है। कोई गलत बात हो और उसका हम खुलेआम निषेध करें, ऐसी हिम्मत आज बहुत कम लोगों में दिखाई देती, शायद ही कोई होगा है कोई गलत परंपरा हो, गलत वृत्ति हो, गलत अभिप्राय हो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं भाई अपन सब लोगों में भी। तो हमें गुरुदेव से कई बातें तो सीखना चाहिए। जब जब गुरुदेव श्री का जन्म जयंती प्रसंग होता है और मैं देवलाली में रहता हूं तो वहां उनके बारे में श्रद्धांजलि व्यक्त करने का अवसर मिलता है, तो मैं प्रायः एक बात यही कहता हूं कि गुरुदेव उनके जो विरोधी थे, जब इसकी चर्चा अभी नियम सार में अपन करेंगे, उनके सिद्धांतों के उनकी वाणी के विरोध करने वाले गुरुदेव पर ही शंका करने लगते थे ये एकांती हैं। अरे बहुत से लोग तो यहां तक कहते थे, दिगंबर समाज के पंडित लोग, कि आप लोग धोखे में नहीं आना, ये बाद में सबको श्वेतांबर बना देंगे ये तो अपने यहां समझ लो नेता लोग थे ना, जहां जाते हैं वहां वैसी भाषा बोलते हैं, तो ये दिगंबरों की प्रशंसा करते हैं, दिगंबरों के गीत गाते हैं, ये छल है सब, ये अंत अंत में सबको श्वेतांबर बना के जाएंगे ये सब बोलो, जबकि वो जानते थे कि ऐसा नहीं होने वाला है। मैं गारंटी से कहता हूं कि जो पब्लिक को इस तरह से गुमराह करते थे वे पंडित लोग खुद भी जानते थे कि ये संभव नहीं है, तो भी समझ लो एक गुरुदेव का विरोध करना है, इसलिए वो इस तरह से मिसगाइड करते थे। अब इतना स्पष्ट आज 9000 टेपों में सैकड़ों जगह ये बात आती, ये वही मूलचंद जी हैं जिनके बारे में क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ वाली बहस भी गुरुदेव से हुई थी, और ये भी दीक्षा लेने के समझ लीजिए 2-4 वर्ष बाद ही हुई थी कि भगवान ने जो देखा है वो होगा, हम चाहे कितने ही पुरुषार्थ करें एक भी भाव हमारे पुरुषार्थ से कम नहीं होगा, भगवान ने जो देखा है वो ही होगा। मैंने उनकी जीवन में और कहान क्रमबद्ध कथा में ये सब पढ़ा और देखा है, ये गुरुदेव को सहन नहीं हुआ बिल्कुल, और उन्होंने साफ कह दिया। एक बार तो वो नाराज होकर के दूसरे उपाश्रय में चले गए, तो गुरुदेव के जो गुरु थे हीराचंद जी महाराज, उनके उन्होंने लोगों को समझाया कि उनको वापस लाओ, तो वो वापस आए। फिर जब दोबारा यही बात हुई तो उन्होंने जवाब दिया, कितना सुंदर जवाब था, ये भी सुनने लायक बात है, जिस क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर सारी दुनिया को पुरुषार्थहीनता नजर आती है और वो ये सोचते हैं कि ऐसा मान लेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हम क्या पुरुषार्थ करें, उसी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में गुरुदेव ने मुक्ति का सच्चा पुरुषार्थ साबित करके दिखाया। ये उनके चिंतन की सबसे बड़ी महान बात है, उनके चिंतन में सैकड़ों न्याय आते हैं, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात ने प्रभावित किया है तो वो ये वाला पॉइंट है कि भगवान तीन काल तीन लोक को जानते हैं तो सर्वज्ञ भगवान इस जगत में है, ऐसी श्रद्धा तुमको है। जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है भगवान ने उसके अनंत भाव देखे ही नहीं होते। यूं कहो कि जिसके दो चार भाव बाकी होते हैं उसी को सर्वज्ञ की श्रद्धा होती नहीं। लंबा काल जिसको है अभी और रखड़ना है उसको सर्वज्ञ होते हैं ऐसी श्रद्धा भी नहीं होती। इसी तरह इस प्रकरण में गुरुदेव ने शाश्वत प्रतिमाओं की चर्चा की तो उन्होंने कहा भगवान आत्मा तो शाश्वत है ही, लेकिन भगवान आत्मा के अवलंबन से जिन्हें सर्वज्ञ दशा प्रकट हुई है ऐसे सर्वज्ञ भी त्रिकाल विद्यमान रहते। कभी कभी गुरुदेव श्री एक स्लोगन उनके मुख से निकलता है, त्रिकाल को जानने वाले का विरह त्रिकाल में भी नहीं होता। क्या बोला? त्रिकाल को जानने वाले का विरह, यानी कभी ऐसा होता नहीं कि ढाई दीप में कहीं भी सर्वज्ञ न हो। ये तो अपने यहां जो विदेश क्षेत्र में विद्यमान भी तीर्थंकर की बात आती है, इस पर भी लोगों को ऐतराज हुआ, ऐसी मंदिर स्वामी की क्यों इतनी महिमा करते। कई लोग तो कहते हैं कि ये अपने यहां के भगवान थोड़े हैं, तो विदेश क्षेत्र के कैसे हो गया। जबकि ध्यानत राय जी की सैकड़ों वर्षों से पूजा ध्यानत राय जी ने बनाई, दीप अणाई मेरुपन अरु तीर्थंकर बीस, तिन सब की पूजा करो मनवच तंधर ईस, और उसमें भी तीर्थंकरों के नाम सीमंदर सीमंदर स्वामी, जुगमंदर जुगमंदर नामी, बाहू बाहू जिन जग जन तारे, ऐसे जयमाला में बीसो तीर्थंकर के नाम, धनस पांच सौ काये विराजे, आयु कोड़ पूरव सब छाजे, ऐसा 500 धनुष की काया करोड़ पूर्व की आयु। ये सब वर्णन उन्होंने बराबर किया। तो इस तरह से शाश्वत प्रतिमा की सिद्धि गुरुदेव ने की। मुझे आपको इस प्रसंग में एक बात खास तौर पर कहना है कि क्या जरूरत थी, ये तो व्यवहार की बात है। गुरुदेव तो व्यवहार को ही बताते हैं, वो तो व्यवहार छोड़ने लायक है ऐसा बताते हैं, वो तो निश्चय भगवान आत्मा की बात करने वाले हैं। तो ये प्रतिमा तो परद्रव्य है, परद्रव्य से लाभ नहीं होता, परद्रव्य से नुकसान नहीं होता, तो कोई माने के नहीं माने उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, बोलो। ये सोचने लायक बात है। गुरुदेव का जन्म इस भारतवर्ष में पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को दिखाने के लिए हुआ, और वो बात उन्हें समय सार में मिली, इसलिए उन्होंने समय सार ग्रंथ का कंटिन्यू 19 बार तो इसलिए हुआ कि 19वीं बार में समझ लो आयु पूरी हो गई, अगर और 10 वर्ष जीते तो 25 बार हो जाता, समझ में आया। यानी एक दिन भी उनकी सभा में गद्दी पर से समय सार ग्रंथ एब्सेंट नहीं हुआ। प्रतिदिन समय सार का प्रवचन, दो समय के प्रवचनों में एक समय समय सार तो परमानेंट, और बाकी समय अन्य ग्रंथ जो हैं दूसरे परमागम शास्त्र उन पर व्याख्यान किए। हमारे जतीश भाई ने तो कैलकुलेशन किया कि 37 ग्रंथों पर व्याख्यान किए, और उन्होंने कई मंदिरों में 37 छोटे छोटे वो आले बना करके और उन 37 ग्रंथों की स्थापना गजपंथा में, अभी हम एमपी में गए थे दमोह के पास कुंडलपुर के पास है जवेरा, वहां पर भी ऐसे 3-4 जगह मैंने देखी कि 37 गुना में 37 ग्रंथों की स्थापना कराते कि गुरुदेव ने इन पर व्याख्यान किए। खैर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रतिमा जड़ है परद्रव्य है तो फिर उसकी सिद्धि करने की और उसकी इतनी महिमा करने की, इंद्रों भी पूजा करते हैं, घुंघरू बांध करके नाचते हैं, तो ये महिमा करने की क्या जरूरत है, प्रश्न तो होना चाहिए ना। आखिर इससे ये पता चलता है कि गुरुदेव दृष्टि प्रधान बात तो सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजनभूत है, और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक होते नहीं, जैसा कि रात्रि को पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में आया। तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी इसलिए दृष्टि के प्रधानता की बात करते, इसका ये अर्थ नहीं है कि ज्ञान प्रधान कथन हो, जैसा कि अभी अपन प्रवचन सार में आएंगे ज्ञान प्रधान कथन, और संयोग की बात हो, व्यवहार की बात हो, तो उसको सर्वथा उड़ाने वाला अभिप्राय हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जिन प्रतिमा है वो बता दे, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माय, जिनेन्द्र प्रतिमा में। और एक और तर्क यहां इसमें तो नहीं दिया उन्होंने, वो प्राय कहते हैं कि स्थापना निक्षेप होता कि नहीं होता है। तो स्थापना निक्षेप में जैसे फोटो में अपन कह देते कि हमारे पिताजी हैं, तो स्थापना निक्षेप से तो कहते हैं ना, भले उसकी कोई विधि नहीं होती, पिताजी की फोटो लगाना हो तो उसमें कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ा जाता है, वो ली और लगा दी। लेकिन भगवान की प्रतिमा है तो उसके पंच कल्याणक विधि करके स्थापना होती है तो स्थापना निक्षेप से भी वो प्रतिमा की सिद्धि करते। एक बात कह के मैं ये प्रकरण पूरा करूंगा। वो एक उदाहरण दिया करते हैं कि गांव में एक साहूकार था, वो किसानों को कर्जा दिया करता था। तो दुकान थी उसकी, परचूनी की ऐसी दुकान भी थी, तो खाते में लिखता था बराबर। तो एक बार एक किसान आया तो उसने सब हिसाब किताब टैली किया, बोले कि ये 5,000 रुपये ये तो मैंने लिए ही नहीं, समझ में आया। तो वो गया, 5 पैसे का ये लिया था, धनिया ली थी, 10 पैसे की मिर्ची ली थी, फलाना लिया था, छोटी मोटी रकम तो सब स्वीकार करे, और जो मुद्दे की रकम आवे तो इंकार कर दे है? तो इस तरह से गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि कोई लोगों ने तो प्रतिमा की पूजा करने में ही धर्म मान लिया, मूर्ति कोई भगवान समझ लिया और उसमें ही धर्म मान लिया, और एक्स्ट्रा उस पर श्रृंगार कर दिया, उस पर समझ लो वस्त्राभूषण पहना दिए। तो किसी ने तो ओवर ऐसा व्यवहार किया, और किसी ने प्रतिमा जी का ही निषेध कर दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं। जबकि दिगंबर शास्त्रों की परंपरा के अनुसार गुरुदेव ने बैलेंस बराबर उनके चिंतन में स्थापित था कि जिन प्रतिमा है निर्दोष होती है, वीतराग होती है, अंतर्मुख मुद्रा वाली होती है, उस पर कोई वस्त्राभूषण नहीं होता, वस्त्र का धागा भी नहीं होता, परंतु उसकी पूजा का भाव शुभ भाव है, धर्म नहीं। ये भी साथ में, कोई तो उसकी पूजा में धर्म मान ले रहे और कोई कहे कि वो तो परद्रव्य है, उसकी क्या जरूरत है, उसका निषेध कर दे रहे, ऐसे दोनों तरफ से विपरीतता हो जाती। एक बात और गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत सुंदर फरमाई कि जो शाश्वत प्रतिमाएं होती हैं वो इतनी अंतर्मुखी और स्वरूपे डूबेला नमन तुझने हो जिनवरा, ऐसी मुद्रा वाली होती हैं, ऐसा लगता है कि अभी बोलेगी, अभी बोलेगी, अभी बोलेगी। मैंने यहां जो सजेशन दिया था ना कि ये विधान के बजाय अपन नंदीश्वर पूजा किया करेंगे और फिर ये प्रवचन सार विधान रखेंगे, उस पूजा में ये आता है, वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, भोन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। ऐसा लगता है कि बस अभी बोलेगी, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है। सूर्य और चंद्रमा की प्रभावी फीकी पड़ती है और दर्शन करने से ऐसा लगता है कि बस एक स्वरूप ही ऐसी अद्भुत चीज है कि उसी में ही डूबने लायक है। तो ऐसे अंतर्मुख होने की प्रेरणा, जय परम शांत मुद्रा समेत, ये स्तुति सुनी दौलतराम जी की है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन, मैं तो सब जगह ये सजेशन देता हूं, देवलाली में भी बोलता हूं, चेंज करते रहना चाहिए। वो स्लोगन सुना आपने, मुझे चेंज चाहिए, सुना है? काय में आता है वो जो गैस सिलेंडर में वो पाइप लगाते हैं ना, वो पाइप चेंज करने के लिए बोला जाता है, मुझे चेंज चाहिए, साल में एक बार तो बदलनी चाहिए, नहीं तो लीकेज हो जाता है। कपड़े अपन बदलते हैं, भोजन का मेनू चेंज करते हैं, पार्टी करें, ब्याह शादी करें तो सुबह वही चीज खिलाएं, शाम को भी वही चीज खिलाएं, दूसरे दिन भी वही दूधी की साग ही समझ में आया, वही का वही रिपीट करे तो किसको पसंद आता है? तो भाव तो उसमें इंद्रिय के विषयों के पोषण का होता है, चाहे वस्त्राभूषण है, माताएं बहने अपने यहां तो बहुत सादगी है, लेकिन कई जगह तो मैंने देखा कि 10-10 प्रकार के जो वो होते हैं ना सेट, जो दागीना के वो रखे रहेंगे लॉकर में, और रोजाना आज ये वाला लाना, आज ये वाला लाना, तो ये कलर की साड़ी तो वही कलर की चूड़ी तो वही कितना, फिर दूसरे दिन बदल के, फिर दूसरे दिन बदल के, यानी विषय रस का पोषण करने के, रस तो एक ही है 5 इंद्रियों के विषय का, लेकिन उसके लिए जीव निमित्त नाना प्रकार के बदलता है। ऐसे भैया यहां भी भक्ति रस के लिए, वीतराग रस के लिए अपने यहां आजकल इतनी स्तुति, इतने पाठ, इतना साहित्य है कि आप चेंज करोगे एक एक सप्ताह में नया नया, तो आपको बहुत अद्भुत समझ लो उसमें तत्व ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। तो बात तो इसलिए याद आई, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि वे सुनि वे भ्रम नशाय। परम शांत मुद्रा वो भव्य जीवों को निज अनुभूति में निमित्त बनती है। ये जिन प्रतिमा आत्मानुभूति में निमित्त बनती, तो जो आत्मानुभूति के लिए ही जन्मे ऐसे गुरुदेव, वो जिन प्रतिमा का कैसे निषेध को मंजूर कर सकते थे, ख्याल में आया ना? तो इस तरह ये एक अनुपम प्रकरण है। मैं तो इस प्रसंग में हिंदुस्तान में सर्वोत्कृष्ट भाववाही प्रतिमाएं मुझे सोनगढ़ की लगती, जो अपना जो मूल सिमंदर स्वामी वाला जो मंदिर है उसमें तीनों जिन बिंब के भाव अलग अलग प्रकार के। अभी आप गौर से देखना, यहां तो अभी 8 दिन तो अपन यहां आ जाते 7:15 बजे, बाद में आप वो 7 बजे जो गुरुदेव का आता है उसमें दिखाते, जब गुरुदेव लमोकार मंत्र बोलते हैं तो वो वेदी का चित्र स्टिल कर देते, कम से कम 5-10 सेकंड तक वो रहता है। तो सिमंदर भगवान तो मानो निज में डूबे हुए, और ये साइड में जो समझ लो शायद शांतिनाथ भगवान है, तो पद्मप्रभ भगवान, उनकी होंठ इस टाइप के बने हुए हैं कि बस अभी बोलने वाले, अभी बोलने वाले, अभी बोलने वाले, अभी बोलने वाले, ऐसा उसको गुरुदेव ने याद किया कि अभी बोलने वाले, ऐसी प्रतिमा है। तो इस तरह से आप देखिए निश्चय के साथ व्यवहार का भी कितना संतुलन गुरुदेव श्री के चिंतन में है, वो समझने लायक। इसमें अपन 200 पेज पर एक दो प्रकरण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। कारण कार्य नियम इसमें दिखाते गए, हाँ, कारण कार्य नियम ये 5वां वॉल्यूम है जो अपना सीडी में चल रहा है। ये तो अंतिम श्लोक है, इसलिए इसमें गुरुदेव श्री ने और महिमावाची बात आई है। आ श्लोको कुंद कुंदाचारी छे एनी टीका पची पद्म प्रमल धारी देवे करी आने सामायिक कहिए। अंतरमा परम शांति अने समाधि उत्पन्न थाय, विकल्प उत्पन्न न थाय, रागनी उत्पत्ति न थाय, तेने सामायिक कहवामा आवे छे, बाकी तो व्यवहार संसार छे। अभी उनको उसका आनंद, आ हा हा, श्लोक नो अर्थ तो देखो, कहने का आशय ये है कि जितने भी अंदर की वितराग भाव वाली परिणति होती है तो उसके साथ में कोई न कोई बहिरंग दशा तो होती ही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का सुमेल है ना। आप सब तो जानते होंगे, मुझे तो एक सॉफ्टवेयर के नाम पे जब मैं छिंदवाड़ा में था इस देवलाली आने के पहले तो एक बार घोषणा हुई कि सोनगढ़ में 50 प्रवचनों का एक भेंट सबको दिया जाएगा। ऐसा सबसे पहली सीडी जो गुरुदेव की निकली थी 50 प्रवचनों, कम से कम 20 वर्ष पहले की बात होगी, 16 वर्ष 18 वर्ष पहले। खैर तो उस समय हमने ये जानते ही नहीं थे ABCD ये लैंग्वेज कंप्यूटर की जो आजकल डेवलप हुई है। तो एक शब्द सुन रखा था सॉफ्टवेयर। तो एक प्रकरण में सही घटना है, हितेन भाई ने मेरे को कहा, यहीं बॉम्बे की बात, उनका मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दूंगा वो ले जाना। मैं सच कहता हूं मैं इतना खुश हुआ कि आज जीवन में पहली बार मुझे सॉफ्टवेयर देखने मिलेगा कि वो कैसा होता है। इतने अनजान। तो उन्होंने एक सीडी दे दी मेरे को, तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर किधर है? तो बोले वो इसके अंदर है। तो मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है। फिर उसके कुछ दिन बाद में मैं नागपुर से छिंदवाड़ा जाता था बस में, तो बगल में एक युवक बैठा था, उसको पूछा मैंने कहाँ जा रहे थे? छिंदवाड़ा जा रहे काय के लिए? बोले मैं सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर काम करता हूँ, तो किसी ने मेरे को वहां कुछ काम है मेरा तो वो उसके लिए जाता हूँ। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर कहते किसको है? तो उसने मुझे समझाया कि जैसे सिस्टम होता है ना, कि अब स्विच पंखे वाला दबाओ तो पंखा चल जाएगा, कि ये स्विच ऑन करने से पंखे में करंट पहुंचेगा, ये एक सिस्टम समझ लो इंजीनियर ने बना दिया, तो उस सिस्टम का नाम सॉफ्टवेयर है। अब जो भी हो थोड़ा बहुत भाव भाषण उस प्रकरण में हुआ। जैसे जैसे फिर अपन बच्चों के निमित्त से परिचय में आते गए तो अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्क समझ में आ गया। ये कपड़ा बिछाना, सामायिक की विधि बताइए अपने यहां पूरी, दर्शन एकादश पदी एक शब्द आया, मैं उसकी चर्चा करूंगा अभी। एकादश पदी 11 पद 11 प्रतिमाएं, तो पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा और तीसरी सामायिक प्रतिमा। ये प्रतिमा शब्द भी कैसे डेवलप हुआ ये मुझे पता नहीं, प्रतिमा का इससे क्या संबंध है? इसके बारे में अपना जो संजय भाई है ना, अपने प्रतिष्ठाचार्य जी, उसने सही घटना सुनाई मेरे को। संजय के जीवन में घटी थी वो घटना। वो पहले कुंभोज बाहुबली में पढ़ता था, हा? तो वहां पे उन लोगों ने कहा होगा गजाबेन वगैरह ने कि तुम एक काम करो, दो प्रतिमा ले लो, तीन प्रतिमा ले लो। वो बड़ा खुश हुआ, जैसे मैं सॉफ्टवेयर सुन के खुश हुआ वैसे वो प्रतिमा सुन के खुश हुआ। उसने सुनाया मुझे संजय ने, तो हाँ ले आप देखो तो ले लेंगे, प्रतिमा ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? भाव ही पता नहीं कि प्रतिमा लेने का मतलब क्या होता है। तो उनने कोई विधि भी की होगी, ऐसा कोई मंत्र वंत्र पढ़ा होगा, जो भी उसकी प्रोसीजर होती हो भगवान के, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ो और फिर वो। तो चलो मैं उदाहरण के लिए तीन प्रतिमाएं लेता हूं, तो अब हो गई तुम्हारी तीन प्रतिमा। तो बोला कि प्रतिमा तो है ही नहीं, प्रतिमा किधर है? रत्नकंड श्रावकाचार में इसके लिए पद शब्द का प्रयोग है, स्थान, समझ में आया? प्रतिमा जो परिमा बोलते हैं ना, तो रत्नगण श्राव का चार में 11 स्थान 11 लेबल, ये वास्तव में श्रावक के आचरण के ऊंचे ऊंचे चढ़ते हुए ये भी पगथिया है, ये भी जैसे 14 गुण स्थान वो सीढ़ियां हैं, ऐसे श्रावक में 11 प्रतिमाएं वो 11 स्टेप्स हैं वास्तव में। तो इसमें सामायिक में देखो, कोई भी प्रतिमा वाली भूमिका हो, कई प्रश्नोत्तर इसमें आए तो गुरुदेव को तो ये विकल्प रहता है कि वास्तव में समाधि अथवा भक्ति आंशिक रूप से चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। देखो आ अनग निर्दोष परमानंदमय तत्व ने आश्रित यही 200 पेज पे कहे छे कि धर्म ध्यान अने शुक्ल ध्यान उत्पन्न कोने आश्रय उत्पन्न थाय छे कोना आश्रय उत्पन्न थाय छे कि परमानंद तत्व निर्दोष परमानंदमय तत्व भगवान त्रिकाली निर्दोष परमानंदमय तत्व आत्मा एने आश्रित धर्म ध्यान अने एने आश्रित सुख धर्म ध्यान थाय छे। इसी तरह ऊपर नीचे देखो थोड़ा बीच नीचे वाला पैराग्राफ एवा कोई विशाल तत्व ने इसको गुरुदेव ने बाद में भी याद किया कितना सुंदर शब्द है विशाल तत्व अत्यंत महान तत्व एने अत्यंत पामे छे अंदर आत्मा विशाल तत्व छे। अब विशालता क्या है विशालता यानी उसकी गरिमा उसकी महिमा उसकी महानता वो क्या चीज है क्यों महान है अनंत ज्ञान छे अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत गुण अनंत अनंत गुणनो गंज छे एवो विशाल तत्व ये विशाल तत्व भगवान आत्मा की महिमा की बात जे स्वने आश्रय रहे छे ए एवा कोई विशाल तत्व ने प्राप्त करे छे। कहा कोई क्रियाकांड करवा थी दयादान व्रत करवा थी ये सामायिक अने धर्म थाय एम छे नहीं। आप देखिए उस चिंतन में संतुलन और अस्ति नास्ति ये गुरुदेव के शैली को पहचानने की पॉइंट कहता हूं मैं। संतुलन यानी बैलेंस श्रद्धा और ज्ञान का दृष्टि प्रधान और ज्ञान प्रधान का और अस्ति से कथन होगा तो उसकी व्याख्या गुरुदेव नास्ति से करेंगे नास्ति से कथन होगा तो उसका डेवलप गुरुदेव अस्ति से करेंगे। ये स्टाइल अपन समझ लें तो प्रवचन सुनने में समझने में बहुत मजा आएगी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि असली जो उनका तत्व है उस तक अपन पहुंच सकते हैं ऐसी लायकात अपने भीतर आ जाएगी। तो कहां से निकाला ये अभी इसमें तो लिखा नहीं कि दया दान व्रत करवाती सामायिक अने धर्म थाय छे एम नहीं ये तो ग्रंथ में टीका में तो लिखा नहीं उसमें ये तो लिखा है ना कि विशाल तत्व के आश्रय से सामायिक होती है इसका अर्थ यह है कि बाह्य क्रिया के आश्रय से सामायिक इत्यादि नहीं होती क्रिया होती है पर क्रिया के आश्रय से सामायिक होती है ऐसा नहीं। अभी तो 2-3 दिन बाद अपना वो आ जाएगा प्रकरण जो क्रिया परिणाम अभिप्राय 7वें अधिकार में विशेष है उसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे 3-4 दिन बाद। तो बारम्बार गुरुदेव सावधान करते बीच में एक प्रश्न आया पंचम काल में थाय के नहीं ये एक सामायिक पंचम काल में होती के नहीं ऐसी चौथे काल में होती थी और गुरुदेव ने बाद में याद भी किया कि लोग कहते चौथे काल गुण स्थान में नहीं होता अनुभूति पंचम काल में नहीं होती ऐसी कई बातें चलती काल जो अहीं लागू पड़तो नथी त्रिकाल मां भगवान त्रिकाल स्वरूप छे ये डायलॉग देखो क्या ये स्लोगन गुरुदेव का त्रिकाल मां भगवान त्रिकाल स्वरूप छे क्या मतलब है इसका कि भगवान आत्मा अनादि अनंत ध्रुव चिदघन चैतन्य वस्तु है वो त्रैकालिक है यानी वो कहने के लिए तो कल भी थी आज भी है और कल भी रहेगी कल माने भूतकाल का अनंत काल आज माने एट प्रेजेंट और कल रहेगी यानी अनंत काल का भविष्यत काल। तो त्रिकाल टिकने वाली शाश्वत चीज जो है वो उसका स्वभाव है उसका स्वरूप है। अब इसमें एक समझने लायक बात यह है कि अपन जो फील करते हैं स्वाद लेते हैं स्वाद लेना माने हर्ष शोक सुख दुख ख्याल में आए ना। तो तो किसका लेते हैं? द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का के भाव का? ये जरा समझने लायक बात है। फोर पॉइंट फार्मूला, चार चीजें प्रत्येक वस्तु में गारंटी से होती ही हैं, उसको न्याय ग्रंथों में स्वचतुष्टय बोला जाता है। ये चर्चा छठवीं गाथा की टीका में से मैं बहुत डेवलप करता हूं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और ज्ञायक एक भाव है। क्या जीव द्रव्य है? सुनना, याद रखना इसको। जीव द्रव्य है, असंख्यात प्रदेश उसका क्षेत्र है, अनादि अनंत त्रिकाल अखंड उसका काल है, और ज्ञायक एक भाव है। तो वस्तु का परिचय आचार्य देव ने, आत्मा का परिचय, क्योंकि पहले शिष्य ने प्रश्न किया था पांचवी गाथा के बाद, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, ये शुद्धात्मा कौन है? तो उसका उत्तर आचार्य देव ने, नवी हो दी अपमत्तो लपमत्तो जान गोद जो भाव। इसके बारे में भी एक बढ़िया समझ लो कल्पना दिमाग में खड़ी होती है कि जब गुरुदेव श्री के हाथ में पहली बार समय सार आया होगा तो ऐसी कौन सी गाथा थी या क्या देख लिया उन्होंने दो पांच मिनट में कि उनके मुख से ये निकल पड़ा? क्या निकला? आ तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे, ये अशरीरी होने का शास्त्र है। तो क्या उन्होंने उसमें ऐसा क्या देखा? ये देखो भाई, 13 वर्ष उन्होंने कैसे बिताए होंगे, 78 से 91 विक्रम संवत ने परिवर्तन किया तब, फिर उन्हें सन संवत 78 में तो समय सार मिल गया है। तो आप यूं लो, 1970 विक्रम संवत उसमें दीक्षा ली 24 वर्ष की उम्र में, और 78 में समय सार मिला। तो समय सार मिलने से उनको राह तो मिल गई, ख्याल में आया ना, सत्य तो मिल गया। फिर भले उसमें गहराई डेवलपमेंट और होता गया ज्यों ज्यों उन्होंने उसका अध्ययन किया, लेकिन 8 वर्ष उनके कैसे बीते होंगे दीक्षा लेने के बाद और ग्रंथ मिलने तक का जो बीच का पीरियड है उसमें उनकी अंतरपरिणति मनस्थिति कैसी हुई होगी? सुनना ध्यान से भैया, जो है उसमें संतोष नहीं था, जो उपलब्ध है, ये क्रियाकांड करना, ये वस्त्र पात्र संभालना, ये उनके सितंबरों के जो आचरण है कठोर उसका पालन करना और ये ग्रंथों का अभ्यास करना, ये सब होता था, पर उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। उनको ऐसा लगता था यार सत्य कोई और चीज होना चाहिए। वो अपशगुन बोलते ना, अपशगुन, वो तो दीक्षा लेने के टाइम पर ही हो गया था और उनके मति ज्ञान में क्लिक भी हो गया था। क्लिक तो समझते हैं ना, आजकल तो कौन सी बड़ी बात है, मतलब जो दुपट्टा सीढ़ी में फंस गया और थोड़ा सा फट गया उससे ही उनको लगा यार ये जो मामला है कुछ गड़बड़ जरूर दिखता है, ये मार्ग हो सकता है कि मार्ग ये नहीं हो मुक्ति का, आत्मानुभूति का, सुखी होने का। तो जो उपलब्ध था उसमें संतोष नहीं था, और जो सत्य था वो पता नहीं था, संस्कार था अंदर। क्योंकि 2 वर्ष बाद ही दीक्षा लेने के उन्होंने ये कहना चालू कर दिया था कि कर्म के उदय से विकार होता है, ये बात बराबर नहीं, ज्ञानावरण के उदय से ज्ञानहीन होता है, फलाने से कर्म से, बिल्कुल झूठ बात, ऐसा बोला, ऐसा है ही नहीं। आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से अपनी पर्याय में हीन दशा को उत्पन्न करता है। समय सार नहीं मिला था, कहां से लाए? एक तो उनके कोई श्रावक या श्रोता, वो नाम तो मुझे याद नहीं है, वो भोसरे 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 कह के सभा में से उठ के भाग गए, और लोगों ने तो चैलेंज किया, वो बड़े सेठ जो थे, दामोदर सेठ वगैरह, कि अपने तुम्हारे गुरु ये बात नहीं कहते, तुम कहां से लेके आए? तो गुरुदेव ने जैन सिद्धांतों की सबसे पहली बात, जैन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत उस परिवेश में, उस वातावरण में जहां कोई दिगंबर शब्द को नहीं जानता था, वहां कहना चालू किया, तो ये सिद्धांत था। कौन सा? कि कर्म के उदय से विकार होता है, ये बात बराबर नहीं। कर्म तो जड़ है, निमित्त है, निमित्त को स्वीकार करते थे, ख्याल में आया? लेकिन निमित्त निमित्त है, उससे कार्य होता है, ये उपचरित कथन है, ये उन्होंने चालू किया। तो इस तरह से सत्य था, जो था वो दृष्टि में नहीं आया, ज्ञान में नहीं आया, और जो चीज वर्तमान में थी उसमें संतोष नहीं होता था, उन्हें कोई और चीज होना चाहिए, और चीज होना चाहिए। जब ये छठवीं गाथा पे नजर गई होगी, जो उन्होंने समय सार दिया, उनने थोड़ा बहुत उल्टा पलटा होगा, छठवीं गाथा पर दृष्टि गई होगी कि जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ज्ञायक एक भाव है, तब उनको लगा, ऐसा लगा जैसे कि अनंत भवों का बोझा परिणति में से उतर गया हूं, अरे ये तो वही चीज है जो मुझे चाहिए थी। अरे अपना चश्मा, अपना मोबाइल, अपनी घड़ी, ऐसी छोटी मोटी चीज है, छोटी सी लेकिन नहीं हो गए तो कितना डिस्टर्ब हो जाता है, हैं? कहीं खो गई हो, कहीं रख दी हो, नहीं मिल रही हो, फिर अचानक मिल जावे तो कैसी फीलिंग होती, फिर बोझा उतर, हाँ अभी, हाँ ये रखी। ऐसे मानो गुरुदेव श्री पल पल आत्मा खोजने के लिए उनकी परिणति तरसती होवे, और वो जहां छठवीं गाथा पढ़ी तुरंत निकला, आहा आ तो असरी थवानो शास्त्र छे। तो बात तो यहां से चालू हुई थी कि हम वेदन किसका करते हैं। जैसे गुलाब जामुन किसी को पसंद है, उदाहरण के लिए, तो 10 बजे खाए तो ज्यादा मजा आएगा कि 11 बजे खाए तो ज्यादा मजा आएगा? टाइम फैक्टर ये इसमें से निकाला, कालज अहीं लागू पड़तो नथी है। आत्मा का स्वाद लेने में, निराकुल अतीन्द्रिय स्वाद लेने में, कोई अगर सुबह सुबह सूर्योदय के समय बैठ करके आत्मानुभूति करे तो ज्यादा आनंद आएगा कि अंधकार में रात्रि को सोने के पहले अगर परिणति अंदर में जाए तो ज्यादा मजा आएगा? कम और ज्यादा का फर्क पड़ेगा, या टेस्ट का भी फर्क पड़ेगा कि सुबह के आत्मा का अनुभव का स्वाद कुछ और है? देखो बाह्य क्रिया में फर्क पड़ता है। आप सुबह सुबह नहा धोगे जल्दी, जिसकी आदत 7 बजे आने की है मंदिर, तो 7 बजे आएगा तो ही उसका अभिषेक पूजन में मन लगेगा। कोई कारणवश अगर वो 15-20 मिनट लेट हो जाए तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। अरे जगह बदलती है तो टेस्ट चेंज हो जाता है, जो इस कोने में बैठता है। समझ में आया ना? वो कदाचित कोई दूसरा आके बैठ जाए, अपरिचित व्यक्ति हम जैसा, हमको क्या पता, खाली थी तो हम बैठ गए। अभी वो शिष्टाचार के नाते कुछ कहे नहीं, उसको दूसरी जगह बैठना पड़े तो भी मजा नहीं आएगा। ऐसा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, क्षेत्र की और काल से बाह्य क्रिया का निमित्त निमित्त संबंध जुड़ता है, आत्मा का नहीं जुड़ता, ये मुझे कहना है। इसमें आया ना, कालज यहीं लागू पड़तो नथी, मैं बहुत खुश हुआ जब ये सेंटेंस आया था। त्रिकाल मां भगवान त्रिकाल स्वरूप छे। तो वास्तव में सुनो, वेदन वेदन किसको कहते हैं? एक तो वेदन माने ज्ञान, ज्ञान को भी वेदन कहते हैं। दूसरा वेदन का अर्थ होता है सुख दुख का भोगना है। जैसे जो दर्दी है, रोगी, वो तो सुख दुख भोगता है, डॉक्टर मात्र ज्ञान करता है, वो भोगता नहीं है। तो वेदन में सुख दुख जो होता है वो भाव नाम का फैक्टर है। तो द्रव्य का वेदन नहीं होता, क्षेत्र का वेदन नहीं होता, काल का वेदन नहीं होता, भाव का वेदन होता है। समझ में आया? देखो, और वस्तु की पहचान, ध्यान देना जरा, अकेले द्रव्य से पहचान नहीं होती, विशेष पहचान, सामान्य पहचान होती है कि ये जीव है, ये पुद्गल है। मैं एक बात पूछता हूं, हम भी जीव द्रव्य हैं और भगवान भी जीव द्रव्य है, द्रव्य से तो दोनों एक शरीक हैं, फिर ये हम पूजा करें और वो पूज्य हैं, ये फर्क क्यों आया? ये काय से आया है? ये द्रव्य तो दोनों का बराबर है ना, तो द्रव्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव से फर्क पड़ता है। हम औदिक भाव वाले, चायोपसमिक भाव वाले, विकारी भाव वाले पर्याय की तरफ से है, और वो वीतराग भाव वाले, आज की पूजा में जो कुंदकुंदाचार्य की पूजा की थी तो उसमें जब दीप का छंद आया तो केवल तटवासी, केवल ज्ञान के किनारे बैठने वाले, वो तो अपने पास समय का एडजस्टमेंट नहीं तो कभी मौका आएगा तो उसकी एक एक पंक्ति में क्या गहरा भाव छुपा हुआ है वो भी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने बताने की। केवल ज्ञान के गुरुदेव कहते ना बेंसरी के उसमें आता है, मुनिराज तो केवल ज्ञान की तलटी में वास करते, उसमें से लिया वो संस्कार उधर का है, वो समझ में आया ना कि केवल ज्ञान के तट में बैठने वाले ऐसे समझ लो मुनिराज की मैं पूजा करता हूं। तो द्रव्य का लक्ष्य होता है वेदन पर्याय में जो भाव उत्पन्न होता है उसका होता है। तो द्रव्य और क्षेत्र से क्या फर्क पड़ता है? सोनगढ़ में बैठ के आत्मा की अनुभूति करे और आपके फ्लैट में ही बैठ करके आप करो तो कोई फर्क पड़ेगा उसमें? निराकुल अतिंद्रिय आनंद में कोई फर्क पड़ेगा? बाह्य क्रिया में फर्क पड़ेगा समझ में आया? लेकिन जो अंतरंग में चैतन्य की अनुभूति है वो द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से पार, और वो एक निर्विकल्प शांत रस वाली, तो समाधि अधिकार है ना, परम समाधि अधिकार। काल ज नहीं लागू पड़तो नथी, त्रिकाल मां भगवान त्रिकाल स्वरूप छे। अभी देखो 201 पेज पर एक जो समापन वाला जो अंश है, एक विशेषता आपने गुरुदेव श्री की ओर देखी होगी, ध्यान लक्ष्य गया होगा कि जो ग्रंथ में लिखा है उसकी एक एक पंक्ति पढ़ते हैं बराबर, चाहे बिल्कुल सिंपल बात होवे, समझ में आया ना? ये तो समापन वाली बात है और ये 12 दफे आया है ये वाक्य, हर अधिकार के अंत में 12 अधिकार हैं नियम सार में, तो हर एक अधिकार के अंत में ये आया। आ रीते सुकवि जन रूपी कमलों ने माटे जेओ सूर्य समान छे। मैंने तो नियम सार के कलशों का भी पद्यानुवाद बनाया और वो 16 वर्ष पहले बनाया था, उसका पहला एडिशन मंगलायतन से छपा था, जब मंगलायतन का पहला पंच कल्याणक था, कलशों का हिंदी पद्यानुवाद, तो उसमें 12 बार ये लाइनों का भी डाला जो गद्य में है, कलश में नहीं है, ऐसे ही टीका में लिखी है। सुकवि जन रूपी कमलों ने माटे जेओ सूर्य समान छे, अने 5 इंद्रियों ना फैलाव रहित देह मात्र जेमने परिग्रह छे। यहां आपने वो भजन में तो बहुत सुना, आनंद लिया, पंच इंद्री का विस्तार नहीं जिसमें वह देह ही परिग्रह है, तन में नहीं तन्मय है दृष्टि में चिन्मय शुद्धात्मा ही ग्रह है, हो पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है, पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है, दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। ये पूजा की लाइन में 4th लाइन में बार बार डाला था, निर्ग्रंथों के पथ पर चल, ऐसा है वो 4th लाइन में रिपीट होता है वो, तो देह ये यहां से लिया वो, देह मात्र जिसको परिग्रह, देह मात्र, देखो खरेखर तो देह है पण देह का परिग्रह नहीं, मूर्छा को परिग्रह कहते ना, और मुनिराज को तो देह के प्रति ममत्व रहा नहीं तो इतने 22 परिसय और उपसर्ग कैसे जीतते, ख्याल में आया ना? लेकिन संग में तो है ही, साथ में तो है ही, ये बताने के लिए कहते हैं कि 5 इंद्री के विस्तार रहित देह मात्र परिग्रह, वे इंद्रियों का विस्तार क्या होता है? देखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, चखने की इच्छा, घूमने फिरने की इच्छा, अरे ज्ञेय लुब्धता, जानने की इच्छा, समझ में आया ना? ये सब इंद्रियों का विस्तार है। तो गुरुदेव ने इसके व्याख्या में देखो मुनि ने तो देह मात्रज होए छे, मुनि ने वस्त्र पात्र होए नहीं, वस्त्र पात्र होए ये मुनि नहीं। ए हता ने ए कोई मुनिए लख्यू छे, मुनि कोने कहवा? कोई लख्यू छे एने माटे विरोध कर्यो छे, मुनि क्या छे? जो प्रसंग बनते हैं उसका भी उल्लेख करते हैं। मुनि तो वस्त्र पात्र रहे जंगल मा रहे अने अंतर ध्यान मा आनंद मा रहे। देखो ये सॉफ्टवेयर, और नग्न दशा होए ये क्या है? ये हार्डवेयर वो दिखती है ना आंखों से, हम उसको टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, यानी जो इंद्रिय ज्ञान का विषय है वो हार्डवेयर है, और जो अतिंद्रिय ज्ञान का विषय है वो सॉफ्टवेयर है। अतिंद्रिय ज्ञान खुद ही सॉफ्टवेयर है। अंतर ध्यान मा आनंद मा रहे एनु नाम मुनि छे। तो जब प्रसंग आवे तो मुनि के स्वरूप का भी विशेष वर्णन गुरुदेव करते हैं। फिर परम भक्ति अधिकार प्रारंभ हुआ और उसमें शुद्ध रत्नत्रय परिणाम वो परम भक्ति, ये 205 पेज पर एक पैराग्राफ है, इसका तो बहुत विस्तार गुरुदेव ने इसमें किया है। इसी में वो एकादश पदी उसकी चर्चा भी है, ये 203 पेज पर सबसे नीचे एकादश पदी यानी 11 प्रतिमाओं के नाम बताए। सब ग्रंथों में प्रसाद सिद्ध उपाय रत्नगण सागाचार में खास 11 प्रतिमाओं के नाम आते हैं। कभी प्रसंग आएगा, कल भी गुरुदेव इसका विस्तार करेंगे, तो उसमें अगर लिंक बैठेगा तो अपन थोड़ी 11 प्रतिमाओं की चर्चा संक्षेप में करेंगे। अभी का समय हो गया इसलिए अपन यहीं विराम लेते हैं।